أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسے کے دن جون جون قریب آ رہے ہیں, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بھی دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں جمع ہو رہے ہیں, اور کچھ دنوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی ایسی صورتیں دکھائی دے رہی ہیں جن کو دیکھے ہوئے مدتیں گزر گئی تھیں. سادہ غریب لوگ جن کے ذہن میں بھی کبھی انگلستان آنے کا کوئی تصور نہیں تھا. غالب نے تو تکلفاً کہا ہے کہ لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا, یعنی حوث سیر و تماشا سو کم ہے ہم کو, لیکن یہاں یقیناً بلا شبہ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمانوں پر صادق آتا ہے جن کو پنجاب میں رہتے ہوئے لاہور دیکھنے کا بھی شوق نہیں تھا اور سندھ میں رہتے ہوئے کراچی دیکھنے کا بھی شوق نہیں تھا, اپنے ارد گرد کے قصبوں میں بھی ضرورت پہ جایا کرتے تھے. تو حوث سیر و تماشا تو کوئی نہیں, اس لیے بھاری تعداد ان مہمانوں کی ایسی ہے جو محض للہ بہت سوگتیں اٹھا کر بہت خرچ کر کے بلکہ بہت سی صورتوں میں توفیق سے بڑھ کر آئندہ سالوں کی آمدن پر انحصار کرتے ہوئے قرضے لے کر بھی یہاں پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں پہنچیں گے. ان سب مہمانوں کی عزت افزائی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے خدا کے مہمانوں کی عزت افزائی کا حق ہے, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان آپ کے ذاتی مہمان تو نہیں, اللہ ہی کے مہمان ہیں, اللہ ہی کی خاطر ان کے مہمان بنے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بارہا یہ خبر دی تھی کہ بہت دور سے کثرت کے ساتھ لوگ تیرے پاس آئیں گے, ان پیشخبریوں میں جو عطا فرمائی گئیں عجیب بات ہے کہ قادیان آنے کا ذکر نہیں ملتا, تیرے پاس آنے کا ذکر ملتا ہے. میں نے جب اس مضمون پہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ خلیفہ وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آپ کا نمائندہ ہے, اس لیے وہ ربوہ میں ہو یا کسی اور شہر میں مہمانوں کے رخ اسی کی طرف پھر جاتے ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ الہام بڑی شان کے ساتھ بار بار اسی طرح پورا ہوتا ہے. لندن کے لوگوں پر سب سے زیادہ مہمانی کا بوجھ پڑتا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ لندن کے لوگ اس بوجھ کو پھولوں کی طرح ہلکا سمجھتے ہوئے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ خدمات بجا لاتے ہیں, اور ایسے بھی گھر ہیں جہاں چار پانچ کی بجائے چالیس پچاس افراد ان چھوٹے سے گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں, اور ربوہ اور قادیان کی وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں. कि वहां भी इसी तरह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान बाद घरों में इस तरह सिमट जाया करते थे कि यकीन नहीं आया करता था कि इस छोटे से घर में इतने अहबाब भी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि पुरानी तालीम है, दोनों तरफ के हकूक हुआ करते हैं, मेहमानों के भी हकूक हैं और मेजबानों के भी हकूक हैं। और जलसे से पहले जुमे पर अमूमन यही दस्तूर है कि मेहमानों को मेहमानों के फराइज बताए जाएं और उनके मेजबानों को उन मेहमानों के हकूक, इसी तरह मेहमानों को मेजबानों के हकूक बताए जाएं और मेजबानों को उनके फराइज। फराइज जो मेहमानों से मेजबानों से ताल्लुक रखते हैं वो तो अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात के खून में रस पस चुके हैं। इस कसरत से जमात में मेहमान नवाजी की आदत है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कौम हो जहां इस कसरत के साथ मेहमान आते हों और मेहमानों को मोहब्बत के साथ और शौक के साथ कबूल किया जाता हो। और इसकी बड़ी वजह जलसा सालाना की इंस्टीट्यूशन है, यानी निजाम जलसा सालाना ने हमारे अखलाक पर बहुत उम्दा और गहरा असर मुतरत्तिब फरमाया है और उसका नतीजा ये निकला है कि दूर दूर के मेहमानों से भी अजनबियत नहीं रही और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हिस्सा बन चुके हैं। बल्कि जलसा सालाना में मेहमानों को घर ठहराकर जो रूहानी लज्जतें मेजबानों को मिलती हैं उनकी याद अगले जलसे तक मचलती रहती है कि कब फिर वो दिन आए, फिर हमें मेजबानी की तौफीक अता हो। और दौराने साल भी उसके नेक असर उनके जज्बे मेहमान नवाजी को बढ़ाकर फजूलतर करके उन पर उनके रोजमर्रा के अखलाक पर अच्छा असर डालते रहते हैं। बस इस पहलू से जब मैं दुनिया की कौमों पर नजर डालता हूं तो बिलाशुबा पूरे यकीन से कह सकता हूं कि खुदा तआला के फजल के साथ मेहमान नवाजी में जमात अहमदिया से बढ़कर कोई तजर्बाकार कौम नहीं है। मेहमान नवाज तो बहुत हैं, अरबों में बड़ी मेहमान नवाजी है और इसी तरह बाज दूसरी कौमों में भी बहुत मेहमान नवाजी है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अहमदी बाकियों से बढ़कर मेहमान नवाज हैं। मैं ये कहता हूं कि जितनी मेहमान नवाजी का अहमदियों को तजर्बा होता है, दुनिया के पर्दे पर किसी और कौम को ऐसा तजर्बा नहीं। क्योंकि जब एक दूसरे के शहरों में सैर के लिए भी जाएं तो बसा औकात अहमदी घरों में जगह ढूंढी जाती है और अहमदी घर भी बड़े शौक से वो जगह सयाहों को पेश करते हैं। तो इसलिए चूंकि ये बहुत कसरत के साथ तजर्बे हो रहे हैं और इनका अखलाक पर असर अच्छा भी पड़ रहा है और बुरा भी पड़ सकता है और आइंदा नस्लों पर भी इसी तरह अखलाक पर असरात जारी हो सकते हैं आइंदा नस्लों के लिए, आइंदा जमानों के लिए। तो इस पहलू से चंद निशाएं हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप उन पर पूरी तवज्जो फरमाएंगे। और जैसा कि पहले ही आपका मिजाज मेहमान नवाजी का मिजाज है और उस वह अंबिया के ताबे है, इन निशाए के बाद और भी आपको इन फराइज की उसने खुल्क के साथ अदा करने की तौफीक मिलेगी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान नवाजी के चंद वाकयात खालिद मार्च 1991 में छपे थे, वहीं से मैं ये वाकयात आपके सामने रखता हूं। उसके बाद किसी और नसीहत की जरूरत बाकी नहीं रहती। मौलवी अब्दुल्ला सनौरी साहब का बयान है कि एक दफा हजरत अकदस बैत मुबारक के साथ वाले हुजरे में लेटे हुए थे कि खिड़की पर लाला शर्मपत या शायद लाला मलावा मल ने दस्तक दी। मैं उठकर दरवाजा खोलने लगा मगर हजरत साहब ने पहले जाकर दरवाजे का कुंडा खोल दिया और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और मुझसे फरमाया, आप हमारे मेहमान हैं। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान का इकराम करना चाहिए। यहां वाकया तो बहुत छोटा सा है लेकिन एक ऐसा सबक है जो हमारी सारी मेहमान नवाजियों को इलाही रंग दे सकता है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये भी फरमा सकते थे कि मेहमान की तकरीम होनी चाहिए और मैं इस गरज से उठा हूं। उस सूरत में मेहमान नवाजी का सारा सेहरा मेहमान नवाज के सर बांधा जाता और बात वहां रुक जाती। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसे अपने तक रखने की बजाय अपने आका और मौला हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना कर दिया, वह खुद क़िबला न बने बल्कि क़िबला नुमा हो गए। और बहुत बड़ी नसीहत फरमाई है कि अगर तुम इस ख्याल से हुस्ने खुल्क का मुजाहरा करते हो कि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया या ऐसा किया करते थे, तो हुस्ने खुल्क में एक मजीद हुस्न पैदा हो जाएगा जिसे कुरानी इस्तलाह में नूरुन अला नूर कह सकते हैं। एक हुस्ने खुल्क तो वह है जो आपकी फितरत से फूटा है, आपकी फितरत का हिस्सा है, उसमें किसी तसन्नो किसी बनावट का दखल नहीं। और एक वो हुस्न है जो आसमान से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसका जिक्र कुरान करीम ने नूरुन अला नूर कहकर फरमाया, और उस नूर से हम हिस्सा पाएं और अपने फितरी नूर को और ज्यादा साखिल कर लें। इस सूरत में यह मेहमान नवाजी ही नहीं रहती बल्कि इबादत बन जाती है। मेहमान की जरूरत का ख्याल हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस कदर रहता था और इस बारीकी से ख्याल फरमाते थे कि जब भी कोई मेहमान रवाना होने लगे, अंदाजा लगाया करते थे कि अगले शहर में जहां खाना मैसर है कितनी देर में पहुंचेगा, और अगर रस्ते में खाने का वक्त आए तो कभी भी साथ ज़ादेरा मुहैया किए बगैर रवाना नहीं फरमाते थे। बरेशी मोहम्मद उस्मान साहब फरमाते हैं, जब मैं हुजूर से रुख्सत होने लगा तो फरमाया, बटाला 2 बजे के करीब पहुंचोगे, रास्ता में खाने का वक्त आ जाएगा, इसलिए यहीं से खाना साथ किए देते हैं। चुनाचे हुजूर ने हजरत अम्मा जान से कहकर खाना तैयार करवाकर हमारे साथ कर दिया। उस जमाने में लंगर खाना इस तरह बाकायदा जारी नहीं था जिस तरह आजकल है, और बहुत सा बोझ हजरत अम्मा जान खुद उठाया करती थी, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बेतकल्लुफी से आपको जरूरियात बता दिया करते थे। चुनाचे इस मेहमान नवाजी में हजरत अम्मा जान ने भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का बहुत साथ दिया है। और जब तक बीवियां हामिदों का साथ ना दें, मेहमान नवाजी के हक अदा नहीं हो सकते। इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपनी औरतों को भी मेहमान नवाजी के अखलाक समझाएं और अपने आला नमूने से उनके अंदर मेहमान नवाजी के जज्बे पैदा करें। ये काम 1-2 दिन का नहीं है। ये नहीं हो सकता कि सारा साल आप अपनी बीवी से बदखुल्की का मुजाहरा करते रहें और जब मेहमान आए तो उसको नसीहत करें कि मेहमानों से हुस्ने खुल्क से पेश आना चाहिए, इसलिए तुम मेरा हाथ बटाओ। ऐसी सूरत में बीवी कभी भी सच्चे दिल से अपने खावन का हाथ नहीं बटा सकती। लेकिन वो खावन जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी अजवाज से हुस्ने सलूक करते हैं, उनके बोझ बांटते हैं, उन पर बोझ नहीं डालते, जहां तक इस्तेआत हो अपने काम खुद करते हैं, और जहां देखा कि बीवी पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है तो साथ मिलकर खिदमत में शामिल हो जाते हैं, ऐसी बीवियां जरूरत के वक्त अपनी जान फिदा करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। बस महज एक वक्त की नसीहत की बात नहीं, सारा साल का हुस्ने खुल्क है जो मौसम पर फल देता है। और जब मेहमान नवाजी के मौसम आते हैं तो यही मीठे फल हैं जो आपकी सारा साल की मेहनतों को लगते हैं। बस यूं ही ना समझें कि आप हाथ बढ़ाएंगे तो फल आ जाएगा। उस फल को लाने के लिए पानी लाना पड़ता है, सारा साल मेहनत करनी पड़ती है, दरख्त की सैराबी और उसकी खुराक के इंतजाम किए जाते हैं, तब जाकर अल्लाह ताला के फजल के साथ वो फल आने के मौसम में फल देता है, यानी दरख्त फल आने के मौसम में फल देता है। हजरत मुफ्ती साहेब फरमाते हैं, एक बार मैं और मेरी वालिदा कादियान आए हुए थे, हम वापस होने लगे तो हुजूर हमारे यक्का पर सवार होने की जगह तक तशरीफ लाए और हमारे रास्ता के लिए खाना मंगवाया। वो खाना लंगर खाने वालों ने किसी कपड़े में बांधकर न भेजा था। तब हजरत अकदस ने अपने अमामा से करीबन एक गज कपड़ा फाड़कर उसमें रोटी को बांध दिया। हजरत मुंशी जफर अहमद साहब मरहूम कपूर छलवी ने बयान किया कि दो शख्स मणिपुर आसाम से कादियान आए और मेहमान खाने में आकर उन्होंने खादिमान मेहमान खाना से कहा कि हमारे बिस्तरे उतारे जाएं और सामान लाया जाए। ये मणिपुर कलकत्ते के करीब है और बहुत दूर का फासला है। उस जमाने में जबकि रेलगाड़ियों के इंतजाम भी अच्छे नहीं थे और गाड़ियां सुस्त रफ्तार हुआ करती थी, सफर की सहूलतें मुहैया नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात थी जैसे किसी दूर के मुल्क से कोई आ रहा हो, वैसा ही मणिपुर से किसी का आना था। तो हजरत नसीम मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मुफ्ती मोहम्मद साहब साहब फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि हमारे बिस्तरे उतारे जाएं और सामान लाया जाए और चरपाई बिछाई जाए तो खादमान ने कहा कि आप अपना सामान खुद उतरवाएं, चारपाइयां भी मिल जाएंगी। ये पंजाबी तर्ज बयान है। पंजाब में मेहमान नवाजी होगी तो बाज ऐसी अखर बात कर देते हैं कि मेहमान को तकलीफ पहुंचती है, और वो जब अखलाक से भी बात करते हैं तो जो मंजे हुए लोग हैं उनको उस पर भी हैरत होती है कि ये कैसी बात कर गए। तो पंजाबी मेहमान हमारे काफी आएंगे, उनको खसूसियत से ये समझना चाहिए कि अपने अंदाज बयान तर्ज बयान में मलाइमत पैदा करें और मौका महल के मुताबिक बात किया करें। मुझे याद है हम कई दफा देहात में जाया करते थे, बड़ी इज्जत के साथ पेश आते थे, बहुत ही कुर्बानी से बहुत मेहनत से मेहमान नवाजी करते थे, लेकिन आदाब गुफ्तगू नहीं है। इसलिए मसलन किसी को मैंने कहा कि आप ये मुर्गा है, ये साल मुर्गे का साल अच्छा बना हुआ आप भी लें, तो जवाब देते थे कि हम तो खाते रहते हैं आप खाएं। अब ये जो तर्ज बयान है इसमें बड़ी सादगी थी, कोई ये नहीं था कि कोई छेड़ा गया है, ये बताया गया है कि आपको मुर्गा खाने को नहीं मिलता, लेकिन एक अंदाजे बयान है। तो मैं समझता हूं कि उस जमाने के मेहमान खाने के जो मुलाजिम थे सादा लोग थे, उनको नहीं पता था कि कैसे गुफ्तगू की जाती है। चुनाचे जब मेहमानों ने ये बात सुनी तो उसी वक्त रुख्सत हुए और यक्का में सवार होकर वापस रवाना हो गए। मुफ्ती मुंशी जफर अहमद साहब फरमाते हैं मैंने मौलवी अब्दुल करीम साहब से जिक्र किया तो मौलवी साहब फरमाने लगे जाने दो ऐसे जल्दबाजों को। वो भी आगे से पंजाबी थे मगर उन पर नूर नबूवत अभी पूरी तरह चमका नहीं था। पंजाबी तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी थे, मगर जब आसमान से नूर नाजिल होता है तो फिर कोई सूबा कोई मुल्क बाकी नहीं रहा करता। ला शर्कियतम वला गर्बियतम का नूर है जो इस शान से चमकता है कि उसमें ना रंग ना नस्ल ना जोग्राफियाई तमीजें कुछ भी बाकी नहीं रहता। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस वाकया का इल्म हुआ तो नहायत जल्दी से ऐसी हालत में कि जूता पहनना भी मुश्किल हो गया, हुजूर उनके पीछे नहायत तेज कदम चल पड़े। चंद खुद्दाम भी हमराह थे, मैं भी साथ था। नहर के करीब जाकर उनका यक्का मिल गया और हुजूर को आता देखकर वो यक्के से उतर पड़े। हुजूर ने उन्हें वापस चलने के लिए फरमाया कि आपके वापस होने का मुझे बहुत दर्द पहुंचा। चुनाचे वो वापस आए, हजूर ने यक्के में सवार होने के लिए उन्हें फरमाया कि साथ साथ चलता हूं, मगर वो शर्मिंदा हुए और सवार न हुए। उसके बाद मेहमान खाने में पहुंचे, हजूर ने खुद उनके बिस्तर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया मगर खुद्दाम ने उतार लिए। हजूर ने उसी वक्त दो नवाड़ी पलंग मंगवाए और उन पर उनके बिस्तर बिछा दिए। उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे और खुद ही फरमाया कि उस तरफ तो चावल खाए जाते हैं। और रात को दूध के लिए पूछा, गरज के तमाम जरूरियात अपने सामने पेश फरमाई और जब तक खाना ना आया वहीं ठहरे रहे। इसके बाद फरमाया कि एक शख्स जो इतनी दूर से आता है रास्ते की तकलीफ और सऊबतें बर्दाश्त करता है, यहां पहुंचकर समझता है कि अब मंजिल पर पहुंच गया हूं, अगर यहां आकर भी उसे तकलीफ हो तो यकीनन उसकी दिल शिकनी होगी। हमारे दोस्तों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये जो वाकया है इसमें सिर्फ मेहमान नवाजी का सबक नहीं, और भी बहुत बारीक अखलाकी इसबाक हैं। आमतौर पर लोग मेहमान की बेइज्जती देखकर अपने नौकरों की बेइज्जती करना वाजिब समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने चूंकि मेहमान से बदखुलकी की है, अब हमारा फर्ज है कि इन पर बरसें और इतना जलील और खार करें, ऐसी गालियां दें, ऐसी सजाएं दें कि इनको समझ आ जाए कि आइंदा मेहमान से कैसे सलूक किया जाता है। एक हजरत नसीम मौलवी अलैहिस्सलाम का समझाने का अंदाज था, उनको पूछा भी नहीं, ये भी नहीं पता किया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी बात की, खुद रवाना हुए, खुद सामान उतारने के लिए हाथ बढ़ाए, खुद उनके खाने का इंतजाम किया, और जब सब सैर हो गए और तबीयतें भर गईं और इत्मीनान नसीब हो गया, तब बगैर उनका नाम लिए एक अमूमी नसीहत फरमाकर लोगों को एक आला दर्जे की अखलाकी तालीम दी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब का बयान है कि गालबन 1897 या 1898 का वाकया होगा, मुझे हजरत साहब ने बैत मुबारक में बिठाया, जो कि उस वक्त एक छोटी सी जगह थी। अब तो आप में से बहुत से कादियान हो आए हैं, जलसा देख आए हैं, अल्लाह के फजल से मस्जिद मुबारक बहुत बड़ी हो गई है। उस वक्त एक छोटे से हुजरे के बराबर थी, छोटे से कमरे के बराबर थी, हुजरा नहीं लेकिन कुछ बड़ा कमरा समझ लीजिए। फरमाया आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाता हूं। ये कहकर आप अंदर तशरीफ ले गए। मेरा ख्याल था कि किसी खादिम के हाथ खाना भेज देंगे, मगर चंद मिनट के बाद खिड़की खुली तो मैं क्या देखता हूं कि अपने हाथ से सीने उठाए हुए मेरे लिए खाना लाए हैं। मुझे देखकर फरमाया कि आप खाना खाएं, मैं पानी लाता हूं। बेख्तियार रिक्कत से मेरे आंसू निकल आए कि जब हजरत हमारे मुख्तदा और पेशवा होकर हमारी ये खिदमत करते हैं तो हमें आपस में एक दूसरे की किस कदर खिदमत करनी चाहिए। ये कैसा अच्छा नतीजा हजरत मुफ्ती सादिक मोहम्मद सादिक साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाला, यही नतीजा आज हम सबको निकालना चाहिए। हजरत मुंशी जफर अहमद साहब बयान फरमाते हैं कि एक दफा मैं खिदमत अकदस में हाजिर हुआ, हजूर बोरिए पर बैठे हुए थे, मुझे देखकर पलंग उठा लाए। मैंने उठाना चाहा तो हजूर ने फरमाया ये ज्यादा भारी है, आपसे नहीं उठेगा। फरमाया आप पलंग पर बैठ जाएं, मुझे यहां नीचे ज्यादा आराम मालूम होता है। मुझे प्यास लगी थी, मैंने घड़े की तरफ देखा, वहां कोई पानी पीने के लिए बर्तन नहीं था। आपने मुझे देखकर फरमाया कि आपको प्यास लग रही है, मैं पानी पीने के लिए बर्तन लाता हूं। नीचे जनाने में जाकर आप गिलास ले आए, फिर फरमाया जरा ठहरिए, और फिर नीचे गए और वहां से दो बोतलें शरबत की ले आए जो मणिपुर से किसी ने भेजी थी। मुझे ख्याल है कि शायद वही दो मेहमान हैं जिन्होंने जाकर अपने इजहार मोहब्बत को बयान की खातिर दो बोतलें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मीठी मेहमान नवाजी की याद में भेजी होंगी। फरमाया इन बोतलों को रखे हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि हमने नियत की थी कि पहले किसी दोस्त को पिलाकर खुद पियेंगे। आज मुझे याद आ गया, चुनाचे आपने गिलास में शरबत बनाकर मुझे दिया। मैंने कहा हजूर पहले इसमें से थोड़ा सा पी लें तो मैं फिर पीऊंगा। आपने एक घूंट पीकर मुझे दे दिया। जो पहली बात थी उसमें भी तकल्लुफ नहीं था, अगर तकल्लुफ होता तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जोर देते कि नहीं, मैंने तो इतनी देर से संभाल कर रखी हुई है, पहले तुम पियो फिर मैं पीऊंगा। ये भी एक मसनूई अंदाज हो जाता। कैसी साफ पाकीजा बेतकल्लुफ तबीयत थी, अपने उस मुद्दत के इरादे को एक तरफ कर दिया और मेहमान की दिलदारी की खातिर जो तबर्रुक चाहता था आपने पहले पी लिया, तो गोया पहले भी मेहमान ही की दिलदारी मकसूद थी, अपनी बड़ाई मकसूद नहीं थी। बस जब मेहमान ही ने तकाजा किया कि पहले आप पी लें, तो आपने बेतकल्लुफ पहले पी लिया। एक घूंट पी के मुझे दे दिया और मैंने पी लिया, मैंने शरबत की तारीफ की। आपने फरमाया एक बोतल आप ले जाएं और एक बाहर दोस्तों को पिला दें। आपने उन दोनों बोतलों से वही एक घूंट पिया होगा जो मेरे कहने पर, मुफ्ती साहब आगे कट गया मजमून है कि जो मेरे कहने पर आपने पिया। एक दफा बड़ी रात गए, एक मेहमान आ गया, कोई चारपाई खाली न थी और सब सो रहे थे। हजरत ने फरमाया जरा ठहरिए, मैं अभी इंतजाम करता हूं। आप तशरीफ ले गए और देर तक वापस तशरीफ न लाए। मेहमान ने ख्याल किया शायद हजरत भूल गए हैं। उसने ड्योरी में झांका तो देखा कि एक साहब चरपाई बुन रहे हैं और हजरत खुद मिट्टी का दिया लिए खड़े हैं। चरपाई बुनी गई और मेहमान को दी गई। उधर मेहमान साहब अर्क नदामत में गर्क हो रहे थे कि मैंने आधी रात के वक्त हजरत को इस कदर तकलीफ दी। उधर हजरत अकदस उधर फरमा रहे थे कि माफ करना, चरपाई लाने में देर हो गई। इब्तदा में मेहमानों का खाना हजूर के घर से ही आया करता था। हजूर मेहमान की जरूरत का ख्याल रखते और ऐसा भी वकूह में आया कि सर्दी के मौसम में हजूर ने मेहमानों के लिए अपना बिस्तर बाहर भिजवा दिया और खुद बगैर बिस्तर के रात गुजार दी। जलसा सालाना के मौके पर बहुत से आदमी अपने साथ बिस्तर न लाए थे। मेहमानों के लिए अंदर से बिस्तर मंगवाने शुरू किए। कारकुन ईशा की नमाज के बाद हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो क्या देखता है कि हजूर बगलों में हाथ दिए बैठे हैं और एक साहबजादा लेटा था, उसे शुतरी चोगा उढ़ा रखा था। मालूम हुआ कि आपने अपना लिहाज भी मेहमानों के लिए भिजवा दिया। मैंने अर्ज की कि हजूर के पास कोई कपड़ा नहीं रहा और सर्दी बहुत सख्त है। फरमाने लगे मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हमारा क्या है, रात गुजर जाएगी। फिर वो किसी से लिहाफ मांगकर ऊपर ले गए तो हजूर ने फरमाया किसी और मेहमान को दे दो, और बावजूद इसरार के हजूर ने वो लिहाफ ना लिया। मोहतरम सेठी गुलाम नबी साहब ने बयान किया कि एक दफा हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए कादियान गया। सर्दी का मौसम था और कुछ बारिश भी हो रही थी। मैं शाम के वक्त कादियान पहुंचा। रात को जब मैं खाना खाकर लेट गया और काफी रात गुजर गई और करीबन 12 बजे का वक्त हो गया तो किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खड़े थे। एक हाथ में गर्म दूध का गिलास था और दूसरे में लालटेन थी। मैं हजूर को देखकर घबरा गया, मगर हजूर ने बड़ी शफकत से फरमाया कहीं से दूध आ गया था। मैंने कहा आपको दे आऊं, आप ये दूध पी लें, आपको शायद दूध की आदत होगी इसलिए ये दूध आपके लिए लाया हूं। सेठी साहब कहा करते थे कि मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए कि सुभान अल्लाह क्या अखलाक हैं ये खुदा का बरगजीदा मसीह अपने अदना खादिमों तक की खिदमत और दिलदारी में इतनी लज्जत पाता है और कितनी तकलीफ उठाता है। ये जो दो फिक्रों दो लफ्जों में हजरत सेठी साहब ने, सेठी गुलाम नबी साहब ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अखलाक का नक्शा खींचा है, ये बहुत ही माना खेज है। फरमाया कितनी लज्जत उठाता है, कितनी लज्जत पाता है और कितनी तकलीफ उठाता है। हकीकत यह है कि मेहमान नवाजी की तकलीफ में लज्जत को बहुत दखल है। अगर आपको लज्जत महसूस ना हो तो आप मेहमान नवाजी के बोझ नहीं उठा सकते। वो मेहमान नवाजी जो चट्टी महसूस हो, जो तकलीफ दे हो, वो मेहमान नवाजी अदा करना बहुत ही जान जोखों का काम है। लेकिन वो मेहमान नवाजी जो लज्जत पैदा करती हो उसके साथ भी एक तकलीफ वाबस्ता है, क्योंकि तकलीफ तो बहरहाल होगी। जो वजनी पलंग उठाकर लाएगा, जो रातों को बगैर गर्म कपड़े के रात बसर करेगा, तकलीफ तो होगी, मगर उसके मुकाबले पर एक लज्जत है जो उस तकलीफ पर हावी रहती है। बस हजरत सेठी साहब का ये फिक्रा पढ़कर मैंने बहुत लुत्फ उठाया कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा भी कैसे जीरक थे और कैसा उमदा कलाम फरमाते थे। ये दो लफ्जों में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ایک خلق کا نہ صرف نقشہ کھینچا بلکہ گہری فطرت کا راز بیان فرما دیا. بس آپ کو بھی مہمان نوازی میں لذت پانی ہوگی, اور اس لذت یابی کے لیے مہمان نوازی کو کسی محبوب سے منسلک کر کے مہمان نوازی کریں تو لذت کا راز پا جائیں گے. اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یاد کر کے مہمان نوازی کریں گے تو چونکہ مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کو پیار ہے, یہی پیار آپ کے مہمانوں کی طرف منتقل ہو جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح لذت پاتے تھے. آپ ہمیشہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھتے تھے, اور آپ کی مہمان نوازی کی لذت آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا کرتی تھی, اور یہ رشتے چلتے چلتے لازماً خدا تک پہنچتے ہیں. بس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگرچہ درمیان میں وسیلے تو موجود ہیں لیکن اچانک وسیلے غائب ہوتے دکھائی دیتے ہیں, اور انسان خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے اور اس کی لذتیں لافانی ہو جاتی ہیں. بس ان لذتوں کی تلاش کریں, انہیں کے ساتھ آپ کے حسن میں, حسن خلق میں دوام ہوگا. آپ کا حسن خلق آپ کی ذات میں قرار پکڑ جائے گا, آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا. اگر بوجھ کے ساتھ اخلاق برتیں گے تو وہ ایک عارضی اور فانی چیز ہوگی, آج آئے اور کل چلے گئے, کسی مشکل وقت میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن جو اخلاق اعلیٰ اور پاک نمونوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں, جو دل میں لذت پیدا کرتے ہیں, وہ ہر مشکل کے وقت ساتھ دیتے ہیں اور وفا کرتے ہیں اور کبھی انسان کو نہیں چھوڑتے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان فرماتے ہیں, جب میں 1905 میں ہجرت کر کے قادیان چلا آیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لایا, اس وقت میرے دو بچے تھے, حضور کے رہائشی سین کے ساتھ والے کمرے میں رہتے تھے اور حضور کے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی. ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت اماں جان حیران ہو رہی تھیں کہ سارا مکان تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے, اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے. اس وقت حضرت مسیح موعود نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بیوی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا. اب یہ قصہ تو ظاہر ہے کہ ان معنوں میں بے حقیقت ہے کہ ایک فرضی قصہ ہے, عملی دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن بات ہے. لیکن پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ قصوں کی صورت میں اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی. اس میں جانور بھی باتیں کرتے تھے, بولتے تھے, اعلیٰ خلق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے, اور کہانی سننے والے کو ایک اخلاقی سبق نصیب ہو جایا کرتا تھا. بس ان معنوں میں, نہ کہ اسے حقیقت سمجھتے ہوئے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں جان کو قصہ سنایا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سارا قصہ سنا, کیونکہ وہ آواز باری پتلی دیواروں سے ہمیں صاف پہنچ رہی تھی. فرمایا, دیکھو ایک دفعہ ایک مسافر کو جنگل میں شام ہو گئی, وہ ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے بیٹھ رہا. اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا. پرندہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانے کے نیچے زمین پر آ بیٹھا ہے, یہ آج رات ہمارا مہمان ہے, اس کی مہمان نوازی کریں. اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں, اس کی سردی دور کرنے کے لیے اپنے آشیانے کی لکڑیاں نیچے پھینک دیں تاکہ یہ جلا کر سینک لے. چنانچہ ایسا ہی کیا. پھر مشورہ کیا کہ آج تو ہم نے اپنے مہمان کو بہم پہنچائی, اب ہمیں چاہیے کہ اسے کھانے کو بھی کچھ دیں. اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم خود ہی اس آگ میں جا گریں اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھا لے. چنانچہ پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ حضرت اماں جان کے کانوں تک نہیں ٹھہرا, آپ کے دل پر جا کے شبنم کی طرح گرتا رہا اور اسے ایک لافانی لذت سے سیراب کر گیا. اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزمرہ کا خلق تھا ہی یہ. جب سردی کی ضرورت پیش آئی تو خود اپنا لباس مہمانوں کے پاس پیش کر دیا، جب کھانے کی ضرورت پیش آئی تو اپنا کھانا ان کے حضور پیش کر دیا. تو جو کچھ انسان کو مکلف بنایا گیا وہ سب کچھ آپ نے اپنے دل کی محبت اور ایک طبی جوش کے ساتھ کر دکھایا. بس یہ قصہ تب اثر انداز ہوتا ہے جب ایک شخص صاحب خلق ہو اور انسان کا دل گواہی دے کہ جو کچھ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کے قلبی جذبات شامل ہیں. بس یہ بھی ایک دو دنوں کی مہمان نوازی کی بات نہیں، یہ روزمرہ کی زندگی کے قصے ہیں. جلسے کی مہمانوں کی تیاری کے لیے آپ کو سارا سال محنت کرنی چاہیے اور سارا سال اپنے گھر کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب یہ مہمانوں کے موسم آئیں تو پھر مہمانوں کے حق اسی طرح ادا ہوں جس طرح انبیاء اور ان سے محبت کرنے والے حق ادا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جہاں تک مہمانوں کی خدمت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب کچھ مہمانوں کو بھی تو بتانا چاہیے کہ میزبانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی وہ ادا کریں، کیونکہ میزبان تو گونگا ہو جاتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنے سامنے ایسی حرکتیں دیکھتا ہے جس کا بوجھ اٹھانے کی اس کو طاقت نہیں ہے، جن کا بوجھ اٹھانے کی اس کو طاقت نہیں ہے، لیکن خاموش ہے. مثلا باہر سے آنے والے جب یہاں ہر گھر میں فون دیکھتے ہیں اور ان پر تالے بھی نہیں پڑے ہوتے اور براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے وہ دنیا میں ہر جگہ رابطے کر سکتے ہیں، تو کچھ تو ان کے سامنے اور کچھ موقع کی تلاش کر کے ایسے وقت میں جبکہ میزبان گھر پہ موجود نہ ہوں یا سن نہ رہے ہوں ان فونوں کا بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، اور نتیجتاً بعض دفعہ غریب میزبانوں پر میزبانی کا اتنا بوجھ نہیں پڑتا جتنا فونوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور مہینوں اس کا ان کے وہ بل ادا کرتے کرتے اپنا سب کچھ سب آمد قریب اسی پہ لٹا بیٹھتے ہیں. بس خدا کا خوف کرنا چاہیے مہمانوں کو بھی. میزبانوں نے اپنی توفیق کے مطابق آپ کی خدمت کی، للہ کی، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا. اکثر وہ ہیں جو محض مسیح موعود علیہ السلام کے رشتے سے ایک دوسرے سے متعلق ہیں. ذاتی مہمان بھی آتے ہیں، لیکن اکثر مہمان ان دنوں میں ذاتی نہیں بلکہ الہی مہمان ہیں. تو میزبانوں کے بھی حقوق ہیں، مہمانوں کو چاہیے کہ ان حقوق کا خیال رکھیں. یہاں اس طرح نوکر نہیں ملتے جس طرح متمول لوگ پاکستان اور ہندوستان میں، یا درمیانے طبقے کے لوگ بھی اکثر اگر سارا وقت کا نوکر نہیں تو جز وقتی نوکر حاصل کر لیا کرتے ہیں. یہاں تو ساری محنت خود میزبانوں کو خود کرنی پڑتی ہے. خواتین جو انگلستان میں رہنے والی ہیں، خصوصاً لندن کی، ان کا تو یہ حال ہے کہ دینی خدمت بھی خدا کے فضل سے اتنا بھرپور کرتی ہیں کہ بعض دفعہ میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ اپنے روزمرہ کے بوجھ اٹھانے کے بعد ان کو یہ فرصت کہاں سے مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کو تیار کرنا، روزمرہ کے کام اتنے ہیں ان کو سمیٹنا ہی بہت وقت چاہتا ہے. ایسے پہ تھوڑی جگہ میں زیادہ مہمان آ جائیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان پر کتنا بوجھ پڑتا ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میزبانوں کا ہاتھ بٹائیں اور کام کو ہلکا کریں. ہاتھ بٹانے کے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ بعض دفعہ میزبان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا ہاتھ بٹایا جائے، ایسی صورت میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے. مختلف مزاج کے میزبان ہیں، اگر پیار سے ان کو سمجھا کر کہ ہماری خواہش ہے ہم آپ کی مدد کریں، ان کو آمادہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے وہ ہاتھ بٹائیں، لیکن زبردستی چھینا جھپٹی نہ کریں. یعنی ہم نے آپ کو نہیں پلیٹ اٹھانے دینی، ہم اٹھائیں گے. ایک دفعہ چھینا جھپٹی میں قیمتی برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بس ایک تو اس بات کا خیال رکھیں، دوسرے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بچے ان کے بچوں میں میزبانوں کے بچوں کے ساتھ مل کر قیامت برپا نہ کریں. بچوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اکیلے گھر کے بچے اگر एक दर्जे का शोर कर सकते हैं तो दो घरों को बच्चे 11 या 20 या 22 दर्जे का शोर करते हैं और दोनों को खुल खेलने की छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि इस ख्याल से कि कोई दूसरे मां बाप बुरा ना मनाए दोनों के साथ नरमी बरती जाती है। और नतीजा ये निकलता है कि जिसके घर पे ये बच्चे क़यामत ढा दें उनकी कोई चीज सलामत नहीं रहती, गंध हर तरफ फैल जाता है, कई चीजों के वाकयात नुकसान हो जाते हैं, शोर फसाद मुसीबत और जिंदगी अजीर्ण हो जाती है। मेहमान तो जब चाहे अपने बच्चों को अलग कर ले, मेजबान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझता है कि अदब के खिलाफ है कि मेहमान के बच्चों को किसी रंग में भी कुछ कहा जाए, इससे उनको तकलीफ पहुंचेगी। तो वो माएं जो अपने बच्चों को दूसरों के यहां शोर करने और उनकी चीजें खराब करने या तंग करने की छुट्टी देती हैं वो बड़ी जालिम माएं हैं। वो वक्ती तौर पर सिर्फ मेजबान को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि अपनी औलाद को हमेशा के लिए खराब कर रही होती हैं। ऐसे बच्चों में से तमीज उठ जाती है, उनमें इशार नहीं रहता, वो दूसरों का एहसास करने के जज्बात से आरी हो जाते हैं और कौम को बदखुल्क लोग मिलते हैं। बस माओं को चाहिए कि साहिब खुल्क बच्चों को अपनी गोदों में पालें और बड़ा करें और कौम के सुपुर्द ऐसी हालत में करें कि उनके अखलाक सवर चुके हों और वो कौमी अखलाक से आरास्ता हों और एक दूसरे के साथ उम्दा मुआशरे का सलूक करें, मुआशरती हकूक अदा करें। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, बच्चे बचपन ही में ये चीजें बातें बिगड़ा करती हैं। जिन माओं ने अपनी औलाद को खुली छुट्टी दे रखी हो, जो चाहे करें, उनकी औलाद लाजिमन बड़े होकर मुआशरे को नुकसान पहुंचाती है। बस अब जबकि आप मेहमान बन के मुख्तलिफ जगहों से आएंगे, अगर आपके बच्चे साथ हैं तो उनको लुगाम दें और पूरी तरह इस बात का एहसास करें कि उनकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ न हो। फिर गप्पों की मजालिस का परहेज किया करें। बाल लोग बैठ जाते हैं और लंबी गप्पों की मजालिस चलाते हैं। ये रिवाज आज का रिवाज नहीं, ये इंसानी फितरत के साथ ताल्लुक रखने वाला देरीना रिवाज है। कुरान करीम फरमाता है कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को खाने पर बुलाया करें तो गपशप में मसरूफ होकर नबी को तकलीफ न दिया करो। आप अंदाजा करें कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना गहरा एहतराम आपके गुलामों को था, लेकिन गपशप की आदत एक ऐसी गहरी आदत है कि जिस कौम को पड़ जाए वो एहतराम के बावजूद भी बाज नहीं रह सकती। अगर ऐसा ना होता तो कुरान करीम में खुदा ताला को वाज़े तौर पर यह नसीहत करने की जरूरत नहीं थी। तो आज तो आम रोजमर्रा के ताल्लुकात में वो एहतराम कोई किरदार अदा नहीं कर रहा जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किया करता था, उसके बावजूद यह हाल था। तो यहां तो ऐसा होगा कि बाज़ दफा सारी रात बैठ के गप्पे मारी जाएंगी और सुबह हो जाएगी और जिन लोगों ने बेचारों ने काम पर जाना है उनको मुसीबत, वो अपने अखलाक के मुजाहरे में इस ख्याल से कि मेहमान यह समझे हम उन्हें छोड़कर चले गए, साथ बैठने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वक्त पर उठा करें, वक्त पर सोया करें और गप्पे मारनी है तो अलग होकर किसी बाहर की जगह में मारें, लेकिन वापसी के औकात का फिर भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो लोग जो किसी के यहां मेहमान ठहरते हैं और अपनी शॉपिंग के लिए चले गए बगैर बताए कि हमने खाना बाहर खाना है, देर में आते हैं, उनका इंतजार होता रहता है, या रात को देर में आए और जगाया और तंग किया, हम तो फलां जगह शहर के लिए चले गए थे। शहरें अपनी जगह और इंसानी हकूक अपनी जगह, किसी का हक तलफ करके आपको सैर करने का हक नहीं है। हकूक अदा करें, फिर ये नफली काम है जिस तरह जैसे चाहे करें। कर्ज लेने से हत्तल मकदूर परहेज करें, क्योंकि देखा गया है कि बहुत से बाहर से आने वाले यहां आकर मेहमानी का लुत्फ भी उठाते हैं और फिर वक्तन फवक्तन कर्ज भी ले जाते हैं और बसा औकात ये कह देते हैं कि आपकी बच्ची की शादी है हम आपको वहां से क्यों ना जहेज बनवा दें, वहां बहुत अच्छा जेवर बनता है, वहां बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं, यहां जो आपको 50 पाउंड में जोड़ा मिलता है वो कराची लाहौर से 10-10 पाउंड में मिल जाता है। तो ऐसी बातें करते हैं और यहां के बेचारे सादा लोग वो समझते हैं कि बहुत अच्छा मौका है, फिर कब नसीब होगा, वो उनके सुपुर्द रखने कर देते हैं। और बाद में उस वक्त पता लगता है जब मुझे चिट्ठी आती है साल के बाद या 2 साल के बाद बाज़ दफा कि फलां साहब थे, हम तो यहां से हमने तो खिदमत की खातिर की, लेकिन जवाब ही नहीं आ रहा, वहां से कहां गायब हो गया, कुछ नहीं पता लग रहा। और बच्ची की शादी के वक्त भी करीब आ रहे हैं, कोई कुछ पता नहीं वो पैसे गए कहां। फिर मैं उनको लिखता हूं, तलाश करता हूं और बसा औकात सख्ती भी करनी पड़ती है। ये वाकया नहीं होना चाहिए, अहमदियों में ये बात बहुत ही बेहुदा और नामुनासिब है। कहां आला अखलाक के मुजाहरे हो रहे हैं और कहां ऐसी बदध्यानती और बदनसीबी कि जिसके हाथ की रोटी खाकर गए हों उसी के साथ धोखा और उसी पर जुल्म, ये तो बहुत ही ज्यादा सफाकी है। आम हालात में भी माली लेन देन में जमात को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। कई दफा मैंने खुतबात में नसीहत की है और ये अल्लाह का एहसान है कि दिन ब दिन जमात इस मामले में सुधर रही है। कई ऐसे लोग हैं जो पेशेवर लेन देन की खराबी करने वाले हैं, वो तो हैं अभी भी, उनके तो लंबे पेशे हो चुके हैं, उनकी आदतों में ये मिर्गी की बीमारी ऐसी पड़ गई है कि अब रुकती नहीं। मगर आम मुआशरे में अल्लाह के फजल से बहुत ही इस बात का एहसास पैदा हो चुका है और खुदा के फजल से अहमदी अपने दीगर मुआशरे के साथियों के मुकाबले पर ज्यादा लेन देन में साफ सुथरा है और ख्याल रखता है। और मेरी दुआ यह है कि कोई भी ऐसा नाहमदी हो जो लेन देन में बदमुआमलगी करे, क्योंकि इसके बहुत बद असरात मुरतब होते हैं और लेन देन में बदयंती करने वालों की औलादें भी नापाक हो जाती हैं, उनमें बेबरकतियां पड़ती हैं, बहुत फिर वो दुख उठाते हैं। बाद ऐसे हैं जिन्होंने सारी जायदादें अपनी लुटा दी आखिर पे और कंगाल होकर बैठ रहे, इसलिए कि जब वक्त था लोगों को लूटा खाया पिया और बाद में वो सिर छुपाते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, कहीं उनको पनाह नहीं मिलती, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो खुदा की पकड़ तो आती है मगर उसके आने से पहले बच जाना चाहिए, और खुदा की खातिर और कौम के नाम और नमूद की और नाम की खातिर, क्योंकि इस कौम के अखलाक को देखकर बहुत से हदायत पाने वाले हदायत पाते हैं, इस खातिर कि अल्लाह के लिए हम अगर अपने अखलाक को संवारेंगे तो अल्लाह के लिए आने वालों के लिए आसानी पैदा करेंगे, लेन देन के मामलात में साफ सुथरे हो जाएं और आपके मुतल्लिक कभी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। एक बात यह है कि जब आते हैं तो फिर जाने का भी नाम लिया करें, बहुत ऐसे आते हैं कि आके हो रहे वहीं के हो रहते हैं और कुछ समझ नहीं आती मेजबान को कि मैं क्या करूं, किस तरह इनको समझाऊं कि बहुत हो गया, थक गए हैं हम लोग, इतनी लंबी आदत नहीं है, तकलीफ हो रही है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेते। वो ऐसी कैफियत हो जाती है जैसे एक अरब शायर ने एक बात को मंजूम किया है, कहता है कि एक दफा एक शायर ने मंजूम नहीं किया, कहानी है उसमें यह शेर जड़ा गया है जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि एक दफा एक साहब जिनको बहुत खाने की आदत थी, वो किसी सफर पर रवाना हुए, रास्ते में किसी के यहां ठहरे और इतना खाते थे कि जब वो मेजबान रोटी लेकर आता था सालन के लिए दौड़ता था तो सालन लाने तक रोटी खा चुके होते थे, और जब वो रोटी के लिए दौड़ता था तो रोटी आने तक सालन खा चुके होते थे, और ऐसे कई बार होता था। आखिर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मेहमान ने इशारतन उनको याद दिलाने के लिए कि आपने रवाना भी होना है कि नहीं, उनसे पूछा कि हजूर आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, किस तरफ का इरादा है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि एक हकीम का नाम सुना है कि मेदे का बहुत अच्छा इलाज करता है, मुझे भूख नहीं लगती तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, मैं समझ गया हूं, लेकिन जब आप वापस तशरीफ लाएं तो मेरी एक दरखास्त है, उसे जहन नशीन रखिए, या जैफा ना इन उत्तना लवजतना नानु जुयूफ हो वह अंथा रब्बुल मंजरी, ऐ हमारे मौजूद मेहमान जब तू दोबारा हमारी ज्यारत करे तो इस हाल में तू हमें पाएगा कि हम तेरे मेहमान होंगे और तू हमारा मेजबान होगा। ऐसी कैफियत वाकईतन हो जाती है यहां बाज घरों की कि वो घर वाले बेचारे तो मेहमान बन के रहते हैं और मेहमान मेजबान बन चुके होते हैं। बार बार समझाया गया है, आने वालों को लिख लिख कर भी नसीहतें की गई हैं कि खुदारा इन बातों का ख्याल रखो और वक्त के ऊपर जाओ और सिर्फ मेजबानों के लिहाज से नहीं, हुकूमत के लिहाज से भी जमात ने जो वादे किए हैं उनका पास करो, क्योंकि एक फर्द की इज्जत भी बड़ी एहतराम के लायक चीज है लेकिन जमात की इज्जत इतनी बाला और इतनी वसी है और इसकी इतनी कदर कीमत होनी चाहिए कि उसके मुकाबले पर हर इंसान की जाती जरूरतें कुर्बान हो जाने के लायक हैं, लेकिन जमात की इज्जत और नाम को कुर्बान नहीं करना चाहिए। नाचे वो लोग जो अंग्रेजी हुकूमत से ये कहकर वीजा लेते हैं कि हम एक मुकद्दस जलसे पर जा रहे हैं, अपने इमाम को देखे हुए तरस गए, मुद्दतें होगी उससे मिले हुए, इस नीयत से हम आए हैं कि वहां जाएं और अपनी रूहानी प्यास बुझाएं, वो जब यहां आते हैं तो बाद उनमें से कहते हैं कि जब रूहानी प्यास बुझ रही है तो जिस्मानी प्यास भी साथ ही बुझ जाए और यहीं असाइलम ले लिया जाए। बाद मुझे आके कहते हैं, पूछते हैं, फिर मुझसे इजाजत भी लेते हैं कि क्यों ना फायदा उठाएं और असाइलम भी ले लें साथ ही। मैं उनसे कहता हूं कि खुदा का खौफ करो, अगर फायदा उठाना है तो जमात से बाहर निकल के उठाओ। जिस अहमदी के दिल में जमात की नामूस का ख्याल नहीं है, उसके वादे का पास नहीं है, जमात की इज्जत को अपने चंद कौड़ी के मुनाफा फायदों के लिए पांव तले रौंदने पर आमादा है, उसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ऐसी सजा नहीं है जो फौरन माफ हो जाए, ये कभी माफ नहीं होगी क्योंकि तुमने सारी जिंदगी का सौदा कर लिया। कुरान करीम फरमाता है कि दुनिया की आजी चंद टकों की खातिर आला अखदार के सौदा न किया करो। बस वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी का सौदा कर लिया, वो तो उन्होंने तो शैतान के पास अपने आप को बेच दिया, उनका फिर जमात से कभी कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इस दुनिया में अल्लाह जानता है उनसे क्या सलूक होगा, लेकिन उस दुनिया में भी मैं जहां तक मैं समझता हूं कुरान का पैगाम, अल्लाह की मर्जी है जिसको चाहे माफ करे, मगर बिलमूम ऐसे लोग कबूल नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप खुदा का खौफ करें, मेहमानों मेजबानों से भी वक्त के अंदर मुनासिब वक्त में ऐसे वक्त में रुख्सत हों कि जब आप रुख्सत हो रहे हों तो वो शुक्र ना करें बल्कि उनके दिल गम से भरे हुए हों, जब आप आए तो उनके दिल खुशियों से मामूर हों, जब आप जाएं तो रो रहे हैं। वैसी ही कैफियत हो जैसे किसी ने एक बच्चे के मुतल्लिक एक शेर कहा है कि ऐ इंसान तू ऐसी हालत में दुनिया में आया कि सब रो रहे थे, तू अकेला रो रहा था और सब खुश थे। इस तरह दुनिया से जाना कि तू अकेला खुश हो और सब रो रहे हो। तो ऐ आने वाले मेहमानों, इससे सबक सीखो, इस हालत में आओ कि अपने घरों को याद करके जैसे भी तुम्हें तकलीफ हो तो बेशक रो, लेकिन खुले हाथों से तुम्हारा इस्तकबाल किया जाए, जहां जाओ वहां घरों को खुशियों से भर दो और ऐसे आला अखलाक का मुजाहरा करो कि जब रवाना हो तो तुम खुश हो कि मैंने एक बोझ उतार दिया है और तुम्हें रुख्सत करने वाले रो रहे हो, ताकि आइंदा जब भी तुम आओ खुले हाथों से मोहब्बत के साथ तुम्हारा इस्तकबाल किया जाए। खुदा करे कि ऐसा ही हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر